नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले दिन विश्व के विकास के उद्देश्य से 6 नई पहलों का प्रस्ताव रखा। इनमें वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार की स्थापना, अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल, नशीली दवाओं और आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन पहलों से चहुंमुखी विकास को हासिल करने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए मानवता के सामूहिक ज्ञान का उपयोग करेगा। अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम का उद्देश्य अफ्रीका में युवाओं को कुशल बनाने के लिए 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों का एक समूह स्थापित करना होगा। श्री मोदी ने मादक पदार्थों की तस्करी की चुनौती से निपटने और मादक पदार्थों और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ने के लिए एक G20 पहल का भी सुझाव दिया। एक लचीले विश्व पर दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव के निर्माण का प्रस्ताव रखा। ये पहल पुनर्निर्माण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरी परियोजनाओं और संबंधित नवाचारों को बढ़ावा देगी। जोहान्सबर्ग से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए त्रिपक्षीय संरचना ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की घोषणा की है। ये घोषणा कल जोहान्सबर्ग में G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के बीच हुई बैठक के बाद की गई। G20 सम्मेलन आज संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में शामिल होंगे। इसका विषय है सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य, महत्वपूर्ण खनिज, कल्याणकारी कार्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रात से पहले प्रधानमंत्री मोदी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध विभाग के सचिव सुधाकर दलेला ने भारत के लिए जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का महत्व रेखांकित किया है। कल जोहान्सबर्ग में एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि एकजुटता, समानता और स्थिरता के व्यापक विषय के अंतर्गत इस वर्ष के G20 ने दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता द्वारा चिन्हित 4 प्रमुख प्राथमिकताओं पर एक सशक्त संदेश दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष से संबंधित मौजूदा घटनाक्रम पर उनकी जानकारी की सराहना की। उन्होंने संघर्ष के शीघ्र समाप्त होने और स्थायी शांति की स्थापना के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। सरकार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा के एक बुलेटिन के अनुसार आगामी शीतकालीन सत्र में इस आशय का प्रस्ताव 131वें संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत लाया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य चंडीगढ़ को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जैसे विधायिका रहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 में शामिल करना है। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म निर्माताओं को सुझाव दिया कि वे जम्मू कश्मीर में फिल्म बनाने की संभावनाओं का लाभ उठाएं। इसे दुनिया की सबसे शानदार जगहों में से एक बताते हुए अनुपम खेर ने निर्देशकों और निर्माताओं से घाटी की समृद्ध संस्कृति, दिलचस्प कहानियों और सिनेमाई नजारों को दिखाने की अपील की। भारत के लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने आज फाइनल मुकाबले में जापान की युशी तनाका को 21-15, 21-11 से हराकर इस वर्ष का अपना पहला खिताब जीता। लक्ष्य ने कल सिडनी में हुए रोमांचक सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के चोउ तेनचेन को हराया था। गुवाहाटी में भारत के साथ जारी दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 334 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।